देखिए कि अगर आज आप अपनी जिंदगी के उस दौर से अगर गुजर रही है ना, कि जहां तब्दीली आती है, जहां कुछ ना कुछ बिगाड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ यस नो हाँ नो चल रही है, तो ये दीन के रास्ते हैं। जब तक कुछ ना कुछ चूच रहा ना हो, वो दीन ही नहीं है। आप देखिए कि जब अल्लाह के नबी दीन की दावत दे रहे थे, घर घर में झगड़े शुरू हुए हुए थे, बेटे भाग रहे हैं, तो माँ बाप जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों पे, और कहीं बीवियां मुसलमान हो रही हैं तो शौहर उनको तलाक की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ये रिस्क लिया, ये रिस्क लेने वालों को अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अब तुम मजबूर हो तो ईमान लाना छोड़ दो, बस ये कहा सबर करो, हिकमत से बात करो, अभी इजहार ना करो। ये तब्दीली आती है, तलपट होती है चीज, फिर पकती है। रोटी एक तरफ पड़ी रहे तो जल जाती है, नरम चीज क्या होती है, उसको इधर से पकाओ इधर से पकाओ। तो ईमान इंसान को गलाता है, कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। जहां दीन के बाद तब्दीली नहीं आती ना, समझ लें कि वो दीन नहीं है। जिसको सारे ठीक है वो तो मुआशरा है, वो तो रस्म और रिवाज है, वो तो ख्वाहिश है। सच्चा दीन जो है वो तो कुछ ना कुछ हाँ ना में बंदे को उलझाता है। ऐसे वक्तों में यकीन रखो कि तुम हक पे हो। ऐसे वक्त में जो बंदा जम जाता है ना, फिर उसको अल्लाह के रास्ते में जमना आ जाता है। देखिए जब आंधियां चलती हैं तो चीजें तोड़ती हैं ना, जो चीजें उड़ती हैं यूं पटक पटक के मारी जाती हैं, कौन से दरख्त बचते हैं जो कायम रहे, जड़ों पे कायम रहे। उनको यकीन है कि हमने इसी जमीन के साथ जमना है। बिल्कुल अकीदे की आंधियां इतनी तबाहकुन होती हैं, बड़े बड़ों को खसो खाशाक की तरह उड़ा के रख देती हैं। और हर इंसान की जिंदगी में चलती है ये आंधी, याद रखे, अभी चले बाद में चले, जितना ऊंचा उड़ेंगे उतनी हवा तेज होगी, याद रखें। कभी आप जाके देखें किसी बिल्डिंग के, जितने ऊंचे फ्लोर्स पे जाते जाते हैं हवा तेज होती है। जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं कहते हैं हवा बहुत होती है ऊपर, हमारे अपार्टमेंट्स में नीचे घुटन होती है। आप जितना अल्लाह के रास्ते में ऊपर उड़ेंगे, अकीदे की बुलंदी है, तैयार है हवाएं आएंगी, इंजॉय करें। जितना आप इंजॉय करेंगे अल्लाह रास्ते आसान कर देगा। इसीलिए अगली आयतों में बड़ी खूबसूरत किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं। फरमाया इसी आयत का आखिरी हिस्सा है, वउमिर तो अनकून मिनल मोमिनीन, मुझे तो ये हुक्म दिया गया कि मैं मोमिनों में हो जाऊं। यानी कुफारे मक्का को साफ साफ बताया जा रहा है कि देखो तुम जो मर्जी करो, तुम्हें दलाइल मिल गए, रोशनी आ गई, अब तुम्हारे चारों तरफ इस्लाम और कुरान की बात आ गई, कोई शक और तरद्दुद का शिकार है तो हो, मैं तुम में से नहीं हूं, मैं मोमिन हूं। पीयर प्रेशर में नहीं आऊंगा, पॉपुलर प्रेशर में नहीं आऊंगा, तुम्हारे अकायद खराब हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे खड़े हुए बुतों के आगे नहीं समाथे टेकूंगा, क्योंकि मेरा सर तो अपने रब के आगे झुकता है, जो कय्यूम है, जो कादिर है, जो कदीर है, उसकी बारगाह में मैं झुकूंगा। इसलिए कहा गया, वा अन अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा, बस मुझे हुक्म दिया गया कि अपना रुख सीधा कर लूं उस दीन की तरफ हर कजी से बचते हुए। वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, और हरगिज मुशरिकों में से ना हो जाऊं। बिल्कुल सीधे तरीके से अल्लाह के नबी के जरिए से आज हमें जवाब सिखा दिया गया। जब हालात तंग हो, जब लोग कहें तुम्हें क्या हो गया, तुम किधर चल पड़े, तुमने कौन सा नया दीन सीखना शुरू कर दिया, तो कह दो कि मैं हनीफ हो गया हूं। हनफी नहीं तो हनीफ हो जाए, या निकाल दें, बस इतना ही फर्क है। एक दफा कोई मेरे पास कुरान पाक लेके आया, हम दौरे कुरान हो रहा था, तो आसनुल बयान कुरान पाक दिए हुए थे। तो बाद में एक दिन एक खातून आई, तो हाईलाइट करके लाई हुई कि ये क्या लिखा हुआ है, कि आप लोग तो कहते हैं कि कोई भी दी मतलब फिरका वाराना नाम नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये तो लिखा हुआ है, उर्दू तर्जमे में भी लिखा था, हजरत इब्राहिम के बारे में आता ना कि मैं हनीफ हूँ। पहली बार के आखिर किया था कि कौन था वो, वमा कान अमिनल मुशरिकीन व कान हनीफ अल्लाह, तो उसके तर्जमे में लिखा हुआ था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ थे। अब ये लिखा हुआ था तो वो इसको पढ़ के आई गलती से कि हजरत इब्राहिम हनफी थे, तो मेरे पास लेके आई और हाईलाइट किया, और कह रही मेरे शोहर ने भी इसको पढ़ा है, और वो कह रहे हैं आप अपनी उस्ताद से पूछ के आएंगे, ये तो कुरान आपने ही दिया है। तो देखिए यहाँ पता चल रहा है कि हजरत इब्राहिम हनफी थे, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा आप गौर से पढ़े जरा, वो बारीक लिखा हुआ उसमें, तो मैंने कहा आप इसको पढ़े, तो थोड़ी सी कोशिश से उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि वो जहन में लफ्ज हनफी हमारे इतना होता है, तो मैंने कहा बस इसमें आपने एक ये गिरा दी है, तो अबू हनीफा तो तब थे ही नहीं, तो बात समझ आ गई बहरहाल उनको। तो यहाँ आप देखिए कि सिर्फ थोड़े से फर्क के बाद इंसान जब अपने आप को सारी चीजों से काट कर एक दिन एक यकसू हो जाता है, अल्लाह का हो जाता है, फिर किसी तरफ रुख नहीं पलटता। सूरजमुखी की तरह उसका रुख अल्लाह की तरफ होता है, जहां अल्लाह का हुक्म आए वहां चल पड़ा। देखिए ये हनीफ होना ही असल में मुश्किल है, یکسو فوکسڈ، ہر دوسرے طریقے کو چھوڑ کر اسلام کا طریقہ، ہر دوسرے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اپنانا، ساری دلچسپیاں، ساری رسومات، سارے طور طریقے، جہالت چھوڑ چھاڑ کے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہے، جس سے اللہ کا نبی خوش ہے، ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف چلنا، یہ ہے حنیف ہو جانا، پھر ایسا شخص مشرک نہیں رہتا۔ کیا اللہ کے نبی مشرک ہونے والے تھے؟ کیوں کہا گیا کہ ولا تکونن من المشرکین؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے امتیوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ خود کو دوسروں سے جوڑنے والے مشرک بن چکے ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ سے زیادہ انسان پیارے لگے، نبی کے کلام سے زیادہ انسان اور بزرگوں کی باتیں پیاری لگیں، تو یہ بھی شرک ہونے لگتا ہے۔ یہاں دیکھیے کتنی زبردست قسم کی دلیل ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ شرک ہے؟ تو شرک تو یہ نا کہ حکم فی شرک فی الحکم ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کی سیدھی آیت ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کا سیدھا سیدھا حکم مل رہا ہے، آپ اس کے مقابلے میں کسی انسان کے فتوے کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث ہو کہ اپنی جگہ، لیکن کیا ہمارے امام کو نہیں ملی؟ تو کیا یہ شرک نہ ہوا؟ جانتے بوجھتے، جب تک نہیں پتا ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن بات کیا ہے کہ جس بندے کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی، پھر وہ کبھی بھی دوسروں سے نہیں الجھے گا، اس لیے کہ یہ بندے کا اصل، دیکھیے کہ بندے کی قیمت کس سے؟ حنیف ہونے سے۔ چند دن پہلے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ اس کا مصرعہ ہے بلکہ، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ مومن کے اندر جب ایمان بڑھتا ہے نا، ایک انرجی آتی ہے، جیسے اسلحہ لوگوں کو جلاتا کٹاتا ہے نا، اس طرح بندہ مومن میں جب ایمان بھرتا ہے نا، حنیف ہوتا ہے، وہ جس چیز کو نظر بھر کے دیکھے وہ چیز اپنی جگہ سے گر جاتی ہے۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے معجزات ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک دفعہ گھور کے دیکھا اور وہ شخص جو تھا وہیں کھڑا ہو کے کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایک دفعہ بدعا دے دیتے تھے تو وہ شخص اتنا یقین رکھتا تھا کہ اب یہ بدعا مجھے ضرور لگے گی۔ ایک شخص کو آپ نے ایک موقع پہ بدعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پہ مسلط کرے، یعنی درندے کے لیے لفظ آتا ہے قلب، تو وہ سفر میں تھا کہیں، تو سب سو رہے تھے اور وہ سب کے بیچ میں سو رہا تھا، اس کو خوف تھا، اتنے میں ایک شیر آیا اور سارے لوگوں کو چھوڑتا ہوا سیدھا اس کے سر پہ آ گیا۔ جو ہی اس نے اس شیر کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے محمد، تو نے اتنی دور ہوتے ہوئے بھی مجھے آج ہلاک کر دیا۔ یہ جملہ کب بولا اس نے؟ جب اس کی زبان سے نکلا کہ اس کے اوپر، یعنی اللہ کے نبی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کون شخص تھا بتا آپ کو؟ اللہ کے نبی کا داماد تھا ایک وقت کا، آپ کی ابو لہب کا بیٹا تھا، یقین تھا، دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ ان کی بد دعا نہ لیں۔ آج بھی لوگ دیکھیں آپ کی بد دعا سے بہت ڈریں گے، آپ زیادہ دیر جائنماز پہ بیٹھے آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے کہ تمہارے مسلح سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں مجھے بد دعا نہ دے دینا، ہوتا ہے کسی کے ساتھ؟ اب تم اللہ والی ہوتی جا رہی ہو۔ تو لہٰذا اپنی قیمت پہچانے، بندے کی قیمت حنیف ہونے میں، در در کا بھکاری کسی کا نہیں، جس تھالی میں کھائے اسی میں ٹھوکر لگائے، جس کے پاس گیا اسی سے محبت اور دوسرے کی برائی نہیں، حنیف، یکسو، فوکسڈ۔ مت ہیلوین مناؤ، مت تم دوسروں کی رسموں پہ چلو، مت دوسروں کے طریقوں پہ چلو۔ آج مسلمان صرف حنیف ہو جائے، اس کی زندگی کئی مصیبتوں سے آزاد ہو جائے۔ پھر فرمایا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک، اور نہ عبادت کرو یا نہ پکارو ان کو جو نہیں نفع دے سکتے تم کو اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں تم کو۔ فائن فعلتا، پھر اگر تو نے ایسا کیا، یعنی پکارا کسی کو اللہ کے سوا، کسی اور کی طرف روح روشن کیا، کسی اور سے مانگا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی کو۔ نبی پکارنے والے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نبی کے اوپر بھی اسی طرح جس طرح آج امت کے لیے، آپ تھے نہیں ایسے، نہ آپ ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے تو اس کی بجائے کیوں داتا صاحب کے پاس جاتے ہو، کیوں غوث اعظم کسی کو کہتے ہو، کیا کیوں کسی کو بگڑی بنانے والا کہتے ہو؟ کوئی ہے؟ دیکھیے ہے ہی کچھ نہیں کسی کے پاس، آپ ایک گھنٹہ کھڑے رہے۔ مثال ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں جیب میں، کوئی میرے پاس آ جائے فقیر، باجی کچھ دے دو، ہے ہی نہیں، دو گھنٹے کھڑا رہتی، جب میرے پاس ہے ہی نہیں، میرا دل بھی چاہے گا تو میں نہیں دے سکتی، जो अल्लाह के माँ सिवा से मांगते हैं उनसे मांगे जिनके पास कुछ है। कहा मांगते भी तो बेबसों से, कब्रों में गए हुए या मट्टी के बुत पत्थर के बुत, और इंसानों के पास तो है ही कुछ नहीं। वो तो इंसान खुद ही इतने कमजोर हैं, जिनके पास कुछ हो उनके तो दिल और ज्यादा खुटे हुए होते हैं, तो तुम्हें वो क्या देंगे? तुम अल्लाह को छोड़कर गैरों से उम्मीद लगाते हो। फाइन फालता, अगर आपने ऐसा किया तो आप ही जालिम होंगे। या जालिमीन से मुराद मुशरिकीन है, कि फिर आप भी मुशरिक हो जाएंगे। कितना बेलाग असूल है कि नबी भी अगर ऐसा शिर्क करेगा तो अल्लाह ताला उसको भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगा, बल्कि उसकी पकड़ दूसरों से और ज्यादा होगी। और लफ्ज जुल्म को भी पहचान लीजिए कि जुल्म अरबी जुबान में कहते हैं वदु शयुन फी गैर महल्लिही, किसी चीज को इसके असल मुकाम से हटाकर किसी और जगह रख देना। तो इससे पता चलता है कि जब हम अल्लाह का हक गैरों को देने लगते हैं तो उसके बाद फिर हम जुल्म कर रहे होते हैं। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, और अगर अल्लाह पहुंचाए तुझे कोई तकलीफ। सोचें अपनी तकलीफों को कितनी आती होंगी, बीमारी की, परेशानी की, जहनी उलझन की, माल की, दिल के रोग, डिप्रेशन, गम का। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ही देता है गम भी दुख भी। कोई नहीं हंसा सकता, कोई नहीं रुला सकता। मत डरो लोगों से, मत भीख मांगो खुशियों की, मत लोगों की खुशी के लिए नाफरमानी करो कि ये तुमसे खुश हो, वो कर ही नहीं सकते। फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, कोई नहीं दूर कर सकता इसको सिवाय उसके, खुद वही करेगा। जो लगाता है वही उतारता भी है, जो जख्म देता है वही उसके ऊपर फाहे भी रखता है। कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला की शान बयान की जा रही है। वही युरित कभी खैरन, और अगर वो इरादा फरमा दे तेरे साथ खैर का, भलाई का, कुछ देना चाहे तुझको, फला रादली फदली ही, तो कोई उसके फजल को रद्द करने वाला नहीं है। सारी दुनिया दुश्मन, सारी दुनिया साजिशें करे, मुखालफतों के तूफान खड़े कर दे, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगंडे कर दे, तुम्हें बददुआएं दे, काबे का पर्दा पकड़ कर तुम्हें बददुआएं दे, फला रौद अली फदली ही, कोई उसके फजल को रद्द नहीं कर सकता, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। युसीब भी मैं यशाओ में निवादी ही, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है पहुंचाता है अपने फजलो करम से। वह हुवल गफूर रहीम, और वो बहुत मगफरत फरमाने वाला, हमेशा रहम करने वाला है। जिसको ये बात समझ आ जाए, ये बात पीछे गुजरी है सूरत अल अनाम में गुजरी, आगे भी आएगी, सूरत अनकबूत के आगाज में भी आती है। बार बार अल्लाह ताला अकीदा दुरुस्त करवाते हैं कि लोगों तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है। अब आप वो सारे अशार और सारी कवालियों के जुमले याद कर लीजिए अगर कहीं सुनी हो, कि जिसमें कई लोग तेरे दर के सवाली, ए नबी ए गौसे पाक, यानी मुझे वो लफ्ज नहीं भूलते, मैं सुना सकती हूँ आपको भी इधर, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता। किन करें कि इतने, जिसको कहते हैं ना कि डंके की चोट पे शिर्क है, भर दे झोली मेरी या गौसे पाक, ये क्या है? आप देखिए कि हम बिल्कुल बेसोचे समझे काम करते हैं, और आप कह के देखें लोगों को तो वो कहेंगे आपको क्या पता। बस दफा लोग शिरकिया बातें पढ़ पढ़ा रहे होते हैं, कोई उनसे पूछे कि आपको पता है आप क्या पढ़ रहे थे, कहते हैं नहीं। किसी जगह ऐसा होगा कुछ लोग पढ़ रहे थे कुछ, मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप जो सब पढ़ रहे थे आपको पता है आप क्या पढ़ रहे थे, किसको समझ आ रहा था? तकरीबन 50-60 लोग थे, एक भी हाथ नहीं उठा। तो मैंने कहा आप में से किसी को भी नहीं दिल में आया ये बात कि जो मैं इतनी दफा पढ़ रही हूँ मुझे इसका तर्जमा तो पता हो? तो एक खातून थी, कहेंगी जी जिन्होंने ये बनाए हैं तर्जमे पढ़ के बनाए होंगे। इसी से सोचे, मैंने बहस नहीं की, मैं छेड़ना नहीं चाहती थी बात वहां, लेकिन मैंने कहा कि किसी ने फिर बनाया है ना ये, नबी का बनाने का तो उसमें कोई लफ्ज भी नहीं था। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे हमें और हमारे सारे साथियों को कि किन चीजों में अपना वक्त लगाते हैं। और एक ऐसा भी मौका हुआ कि किसी ने ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ था और उसके बाद दर्स था मेरा, तो जब नमाज के बाद मैं दर्स के लिए जा रही तो एक खातून थी तो जो जाने लगी, जो बेचारी कब से बैठी थी मजदूरी करने, कई दफा पढ़ चुकी थी तो अब थक भी चुकी होंगी, तो वो जा रही थी, बड़ी अच्छी खातून लगी मुझे। तो मैंने हंस के पूछा, मैंने कहा आप जा रही हैं? तो कह रही नहीं असल में एक और खत्म में जाना है मैंने। तो मैंने कहा खत्म एक आपने पढ़ लिया, आप थोड़ा सा दर्स भी सुन लें। कहती नहीं वो फिर वहां भी रिश्तेदारी है तो गाड़ी में लोग बैठे हैं, चली गई। इतना मुझे दुख हुआ, मैंने कहा जिस चीज ने कुरान शुरू कराना था इसकी जिंदगी में वो इसने सुना ही नहीं। है, तो खत्म को खत्म करें, शुरू को शुरू करें, है, ताकि जिंदगी में ही कुरान खुल जाए जो हमारे मरने के बाद खत्म होंगे। तो अल्लाह की जात देने वाली लेने वाली उसी की बात को सुनेंगे तो फायदा होगा, वो है गफूर रहीम। इसकी तफसीर अगर मजीद सुनना चाहें तो आप सूरत दूसरी आयतों में से सुन सकते हैं, उस पर हमने काफी डिटेल से बात की थी। फिर आगे फरमाया, कुल या यूहन्नास, ए लोगो, कह दीजिए क्या लोगो, नबी के जरिए से कहलवाया जा रहा है, कद जाकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, बेशक आ क्या है तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से। कौन सा? ये अल्लाह का कलाम। नबी आ गया, अल्लाह मक्का वालों को, अरब वालों को, बनी आदम को, सारी दुनिया को बताते हैं कि कान खोल के सुन लो कि जिसका इंतजार था वो आ गया। हिदायत का वो सूरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तुलू हो चुका है, नेकी की शाहराहें जगमगाने लग गई हैं, शक शुबे की धुन दूर होने लग गई है, अब तबलीग का हक अदा हो गया है, अब तुम्हारी मर्जी, आते हो तो आओ, नहीं आते तो कोई बात नहीं। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो हिदायत कबूल करेगा, जो इस रास्ते पे चलेगा, वो सिर्फ अपने ही भले के लिए चलेगा, और वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो कोई भटका, जो गुमराह हुआ, तो उसका भटकना अपने ही खिलाफ है, अपने ही ऊपर पड़ेगा, उसका वबाल उसी पे पड़ेगा। वमा अना अलैकुम बिवकील, और मैं तुम पर निगरान नहीं हूं, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब मैं तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं, तुम जानो और तुम्हारा काम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे लगता है कि जब एक दफा पैगाम पहुंच जाए हस्बे तौफीक, तो फिर उन लोगों के लिए गम भी नहीं खाना चाहिए, हुज्जत तमाम, आगे चलो। नबियों की ये सुन्नत रही। अब देखेंगे नबियों की जिंदगी में हिजरत थी, एक मुकाम फिर दूसरा मुकाम, पूरे इखलास जिम्मेदारी से बगैर किसी मुफाद के पैगाम देते, आगे चल पड़ते, फिर रियायत नहीं करते थे, रोते नहीं रहते थे, हाय मक्का वाले ऐसे थे, नहीं, अब मदीना वालों को देखो वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनके काम क्या हैं। तो यही बात यहाँ बता दी गई कि अब आप इनका गम ना करें, जो कर रहे गलत फिर खुद ही भुगतेगा, हमने तो एक कोशिश करके दिखा दी, हुज्जत तमाम कर दी। वत्तबी मा यूहा इलैका, और ए नबी आप पैरवी कीजिए उसकी जो आपकी तरफ वही की जाती है, यानी लोगों की बातों को मत सुने, इनके डरावों में मत आए, इनकी रगबतों में ना आए। वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, सबर कीजिए और सबर करें यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। ये कौन सा फैसला था? नबी की नुसरत का और जुटलाने वालों की हलाकत का फैसला था। यहां इशारा कहते हैं कि मक्का से मदीना हिजरत का भी है, गज़वे बदर की फतह का फैसला भी है, और सारी बातें ठीक है क्योंकि इस सूरत के नाजिल होने के बाद कुछ अरसे के बाद आपको हिजरत का हुक्म मिल गया, आप हिजरत करके गए और वहां आपके साथ अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा अपने वादे जो थे पूरे किए, और वो सारी बातें जो यहाँ हुई थी उसको अल्लाह ताला ने आपके सामने पेश कर दिया। तो ये थी सूरत यूनुस, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा भरपूर तरीके से पैगाम दिया। आप देखिए कि इसमें एक तो कुल या यूहन्नास का लफ्ज बहुत दफा आया, इसमें खुशखबरियों की बातें बहुत आईं, और अल्लाह ताला अपने नबियों के जरिए से जो बातें हमें बताते हैं उसमें हमारे लिए नसीहत भी बहुत होती है कि किसी को तबलीग करो तो फिर उसमें क्या अंदाज हो। इंशाल्लाह हम जब सूरह हूद का करेंगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें फिर आपको कुछ सूरह यूनुस की मजीद बातें खुलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी कमी कोताहियों को माफ़ करे, और पूरी सूरत में जितनी बातें अमल की हुक्म की हमने पढ़ी इस पे अमल की तौफीक दे, और जिन बातों से रुकने का हुक्म था उस पे रुकने की तौफीक दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.